पृष्ठ संख्या 58, अध्याय 6, पारिभाषिक शब्द, व्याख्या, अर्थ और वर्णन। हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, परंतु सुनने वाला या पढ़ने वाला व्यक्ति हमारे विचार तभी समझ सकता है जब हमारे द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अर्थ और उस व्यक्ति द्वारा मन में गृहित अर्थ एक ही हो। वक्ता और श्रोता एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ लें तो विचारों का आदान प्रदान ठीक तरह से हो नहीं पाता। कभी कभी एकाध शब्द अड़ गया तो शब्दकोश के सहारे सही अर्थ को हम जान लेते हैं। संक्षेप में, एक शब्द का एक ही अर्थ लेने पर ही दो या अनेक व्यक्तियों के बीच का संवाद सफल होता है। कलाकारों ने या विद्वान अधिकारी व्यक्तियों ने शास्त्रीय और कला विषयक विचार व्यक्त करने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दों को चुना और उन विषय के संदर्भ में उन शब्दों को एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता गया। ऐसे शब्दों की मदद के बिना शास्त्र या कला का ठीक ठीक अध्ययन या आकलन नहीं हो पाता। अतः प्रत्येक अध्ययन के विषय के लिए ऐसे विशिष्ट शब्दों या शब्द समूहों से युक्त भाषा तैयार होती गई। इन शब्दों को पारिभाषिक शब्द के नाम से संबोधित किया जाता है। ताल और तबले के शास्त्रकारों, कलाकारों एवं टीकाकारों ने भी तबले के विषय में विशिष्ट शब्दों से युक्त अपनी एक स्वतंत्र भाषा को विकसित किया है, जिससे परिचय के बिना तबला वादन के संदर्भ में अभिव्यक्त विचारों को हम ठीक तरह से समझ नहीं सकेंगे। तबले से संबंधित ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के अर्थ, व्याख्या और तद विषयक विवेचन करना प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य है। तबला वाद्य का भारतीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अलग अलग भाषाओं तथा संस्कार के कलाकार अलग अलग प्रदेशों में अपनी कला को प्रस्तुत करते समय विशिष्ट शब्दों को चुनने लगे। फलतः भिन्न भिन्न घरानों में कुछ शब्दों को विशिष्ट अर्थ प्राप्त होते गए। तबले के विद्यार्थियों के लिए इन अर्थों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक होता है। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पृष्ठ संख्या 59। कायदा, रेला और गत के मेल से बनी हुई कुछ रचनाएं। पहला, उपर्युक्त तीनों वादन प्रकार संपूर्णतः स्वतंत्र हैं, किंतु एकाध गत की निर्मिति कायदे की कल्पना से विकसित हुई होती है, अथवा एकाध कायदा दूसरी किसी गत की संकल्पना से पैदा होता है। ऐसी हालत में उस रचना को सुनते समय उसमें हमें कायदा एवं गत दोनों ही का भास या प्रतीति होती है। ऐसी कायदे की रचना में जब गत अंग प्रधान होता है तब उसे गत अंग कायदा कहा जाता है, और जब किसी गत में कायदा अंग प्रधान होता है तब हम रचना को कायदा अंग गत कहते हैं। किंतु यह विचार सर्वस्वीकृत नहीं है। कुछ लोग ऐसी रचना को गत कहते हैं तो कुछ उसे कायदा कहकर संबोधित करते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि एकाध रचना न तो कायदा होती है न चलन। अगर उसे रेला कहा जाता तो रचना की एक गुण दुगुण नहीं होती, किंतु वह लगता है सर्वांगों से रेला जैसा ही। जब वह रचना न कायदा है न चलन न रेला, तब हमारे ध्यान में आता है कि यद्यपि यह रचना किसी भी प्रचलित वादन प्रकारों में समाविष्ट न हो सकती हो, तो भी वह है नवीन्यपूर्ण एवं सुंदर रचना। संभवतः आरंभ में शास्त्रकारों ने उसे लेकर नाक भौं सिकोड़े हों, तो भी उस रचना का असली सौंदर्य कम नहीं हुआ। असली सौंदर्य के प्रति इस प्रकार नाराजी व्यक्त करने के बदले उस रचना को शास्त्र के अंतर्गत कैसे समाया जाए, इसका विचार वास्तव में शास्त्रकारों को करना चाहिए और वैसा आम तौर पर किया भी जाता है। इसी दृष्टि से ऊपर चर्चित रचना को रव नावा नामाभिधान प्राप्त हुआ। तीसरा, कभी कभी एक ही रचना को अलग अलग घरानों में प्रायः अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। ये नाम अलग संपूर्णतया अलग होते तो भी झमेला मिट जाता, किंतु दो समान स्वरूप की रचनाओं को दो अलग अलग रचना प्रकार के नामों से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए धातिरिकिट तक धातिरिकिट धातिर घिड़नग तुन्ना किट तक, पंडित नारायण जोशी, पृष्ठ संख्या 60, रचना 2। धातिर घिड़नग धीर घिड़नग धातिर घिड़नग तुन्ना किड़नग। उपर्युक्त दोनों प्रकार समान गुण धर्मों के होकर भी रचना प्रकार एक को कायदा तो रचना प्रकार दो को रेला कहा जाता है। रचना प्रकार एक को कायदा क्यों कहा जाए, कायदे के कौन से निकष वह रचना पूर्ण करती है और रेले के कौन से निकष वह पूरे नहीं करती, इसका कोई भी स्पष्टीकरण हमें प्राप्त नहीं होता। केवल एकाध घराने में विशिष्ट रचना को कायदा कहते हैं, इसीलिए शास्त्रकारों को उसे मान्य करना चाहिए, सो बात नहीं है। ऐसी रचनाओं को हमें रेला ही कहना चाहिए और उसे रेला ही क्यों कहना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण भी देना आना चाहिए। यहाँ एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि रचना क्रमांक एक असली एवं अत्यंत सुंदर रचना है। उसका कलात्मक सौंदर्य निर्विवाद है और हम मानते भी हैं कि वह रचना वादन के लिए अत्यंत योग्य एवं प्रभावी है। मेरा अपेक्ष यही है कि उक्त रचना को कायदा के नाम से संबोधित न किया जाए। उसे कायदे के तत्व या निकष कैसे लागू नहीं होते, सो कायदा शीर्षक अध्याय में दिए गए निकषों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तबले की शिक्षा में सुसूत्रता आ जाए एवं तबला वादन की संकल्पना के बारे में कोई घपला पैदा न हो, इसलिए सभी वादन प्रकारों एवं संगीत में अंतर्भूत विविध संकल्पनाओं की व्याख्या एवं वर्णन शास्त्रीय आधार पर होने चाहिए। इस बात पर हमें दृढ़ रहना चाहिए। बेलगांव, गौहाटी, राजकोट, अमृतसर, कटक सभी स्थानों पर तबले के विद्यार्थियों के मन में कायदा कहते ही निश्चित निकषों की रचना खड़ी रहनी चाहिए। उसी प्रकार एकाध रचना कायदा है या पेशकार, यह उसे कहना आना चाहिए। जानकार लोगों में इस बारे में एकमत होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी गुमराह न हो। इस संदर्भ में घराने के लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पंडित नारायण जोशी अजराणे के निम्नांकित कायदे को पेशकार कायदा कहते हैं। धीना धागिन धात्रक धागिन धात्रक धातिधा गिन तुना किड़नक। यह कायदा अजराणे का एक विधिवत कायदा है, किंतु इस कायदे को पेशकार में बजाने की प्रथा उस्ताद थिरकवा ने शुरू की, इसलिए इसे पंडित जोशी ने पेशकार कायदे के नाम से संबोधित किया होगा। पृष्ठ संख्या 61। लय ताल तबला वादन के संदर्भ में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन संज्ञाओं का अचूक अर्थ क्या है, इस संदर्भ में सभी घरानों के अधिकारी एवं विचारवान वादक एवं शास्त्रकारों की एक परिषद बुलाकर उन सब पारिभाषिक शब्दों को निश्चित अर्थ प्राप्त कर देने का कार्य यथाशीघ्र संपन्न करने की आवश्यकता है। पारिभाषिक शब्दों का संदिग्ध अर्थ नहीं होना चाहिए। इसका और एक कारण यह है कि संगीत के विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले होते हैं और उनके द्वारा ग्रहण किया गया अर्थ अलग परीक्षकों को मान्य नहीं हुआ तो विद्यार्थी का परीक्षा में नुकसान हो सकता है। इसलिए एक शब्द के लिए एक ही निश्चित अर्थ होना जरूरी है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द एवं उनका शास्त्रीय अर्थ देने का प्रयत्न किया गया है। अनेक पुस्तकों में पारिभाषिक शब्दों की व्याख्याएं कम से कम शब्दों में की गई पाई जाती हैं। वास्तविक बात यह है कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ व्याख्या माध्यम से लेकर अलंकार की परीक्षा तक के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। इस संदर्भ में ऐसे विविध प्रश्न पूछना उचित हो तो भी विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर एक सा देना अनुचित एवं गैर मुनासिब है। तबले की बीए एमए की परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों से यह अपेक्षित होता है कि वे पारिभाषिक शब्दों की गहरी और विस्तृत व्याख्याएं लिखें। उनकी अपेक्षाओं को दृष्टि सम्मुख रखकर उनके लिए उपादेय हो, इस उद्देश्य से यहाँ अनेक पारिभाषिक शब्दों की मात्र व्याख्याएं न देकर उस संदर्भ में अधिक जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है। विद्यार्थियों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस ग्रंथ के अनेक अध्यायों में इन पारिभाषिक शब्दों के बारे में विस्तृत रूप में विवेचन किया गया है। उदाहरण के लिए पेशकार, कायदा, रेला इत्यादि। विद्यार्थियों को चाहिए कि उक्त विचार एवं संबंधित जानकारी का उपयोग ये वे व्याख्या संबंधी उत्तर लिखते समय अवश्य करें। पारिभाषिक संज्ञाएं, अंग। प्राचीन संगीत शास्त्र में ताल के विभाग या खंड को अंग कहा जाता है, किंतु आज के संगीत में एकाध वादन क्रिया या शैली को अंग कहकर संबोधित किया जाता है। इसीलिए कभी कभी ड्योढ़ी के अंग का प्रयोग किया, इस वाक्य प्रचार का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी तबला कलाकार पूरब अंग से तबला बजाता है, ऐसा कहने की पद्धति है। दूसरा, अक्षर। विशिष्ट उंगलियों एवं पंजों के रखाव से तबले पर विशिष्ट स्थान पर एक आघात करने पर निर्माण होने वाले नाद को जिस नाद सदृश भाषिक वाचिक उच्चारण से व्यक्त किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर नाद सदृश होता है। इन अक्षरों से शब्द समूह और भाषा बनती है। तीसरा, अतीत। अनपेक्षित रूप में सम के पश्चात किंचित काल के बाद पूर्ण होने वाली एवं सुखद धक्का देने वाली रचना को अतीत कहते हैं। इसमें रचना की समाप्ति का बिंदु सम के बाद जितना निकट होता है उतनी ही यह रचना आकर्षक होती है, किंतु ऐसी रचना बजाने में मुश्किल होती है। चौथा, अनागत। अनपेक्षित रीति से सम के पहले पूर्ण होने वाली और उसके कारण सुखद धक्का देने वाली कलात्मक रचना को अनागत रचना कहते हैं। यह रचना जिस बिंदु पर समाप्त होती है वह बिंदु सम से जितना अधिक निकट हो उतनी ही यह रचना बजाना मुश्किल होता है। नोट, अनागत या अतीत रचनाओं का असली सौंदर्य उनके अनपेक्षित रूप में समाप्त होने में निहित होता है। पांचवा आड़ लय ड्योढ़ी लय, तीसर जाति की लय को आड़ लय ड्योढ़ी लय कहते हैं। दो मात्रा काल को तीन मात्राओं में रूपांतरित करने की क्रिया को आड़ लय या ड्योढ़ी लय कहा जाता है। छठवां आवर्तन, ताल के संपूर्ण मात्रा काल को आवर्तन कहते हैं। उदाहरण 16 मात्राओं के काल को त्रिताल का आवर्तन कहते हैं। दूसरा नियोजित लय में किसी भी ताल में सम से निकलकर सम तक पहुंचने के यात्रा काल को उस काल का आवर्तन कहते हैं। सातवां उठान, कथक नृत्य के आरंभ में जो रचना प्रस्तुत की जाती है उसे उठान कहते हैं। बनारस घराने में सोलो तबला वादन का आरंभ उठान से ही किया जाता है। उठान एक प्रकार का टुकड़ा ही होता है, किंतु वह टुकड़े की तुलना में आकार में बड़ा होता है। जिस प्रकार अन्य घरानों में पेशकार को आरंभ करने से पहले मोहरा बजाया जाता है, वैसा ही बनारस घराने में उठान बजाया जाता है। गायन में नाट्यपूर्ण या चमत्कृत जन आरंभ करने की पद्धति नहीं है, किंतु नृत्य या तबला वादन में ऐसी पद्धति प्रचलित होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे महफिल के आरंभ में ही एकदम चैतन्य पैदा करके कलाकार अपना प्रभाव श्रोताओं पर डाल सकता है। पृष्ठ संख्या 63, महफिल में श्रोताओं की एकाग्रता शुरू में नहीं होती, वे एक दूसरे से बोलते रहते हैं। उस वक्त उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कलाकार समर्थता के साथ उठान का प्रयोग करता है और अपना वादन शुरू करता है। आठवां उड़ान, किसी एक मात्रा से आरंभ करके छोटा सा एक टुकड़ा बजाकर अनपेक्षित रूप में सम पर आने की रचना को उड़ान कहते हैं। नौवां उपज, पहले क्या बजाया जाए यह निश्चित न होने पर भी समयोचित सूझबूझ के साथ किया गया उत्स्फूर्त वादन ही उपज है। कुछ बोल बजाने के बाद उसी बोल के शब्द आकार और विचार में से कल्पता या कुछ सूत्र से नए बोल का निर्माण करके उसे तुरंत प्रस्तुत किए जाने की क्रिया को उपज अंग की निर्मिति कहते हैं। साथ संगत करते समय उपज अंग अत्यंत आवश्यक होता है। यह वादन प्रभावी होने के लिए कलाकार का मात्रा काल का अत्यंत सूक्ष्म तथा कल्पना शक्ति तरल होनी चाहिए, साथ ही वह सतर्क प्रयोगशील एवं साहसी होना चाहिए। समर्थता से उपज अंग से बजाने के लिए भी पहले अनुशासनबद्ध अध्ययन के संस्कार होना जरूरी है। दसवां है कायदा, कायदा सुनियोजित एवं सुनिश्चित व्यंजन प्रधान शब्द या शब्द समूह और उनके पूरक सहायक स्वरमय अंतिम शब्दों की बनी हुई विस्तारक्षम खंडबद्ध खाली भरी युक्त और तालाकार कलापूर्ण ऐसी रचना है जिसकी प्रस्तुति मध्य तथा द्रुत लय में होती है। कुछ विद्वानों की राय में फारसी कैद शब्द से कायदा शब्द बना है। इसमें कुछ विशिष्ट शब्दों को कायदे की रचना में कैद किया होता है और उन शब्दों के अनिर्बंध विस्तार को प्रतिबंध किया गया होता है। ग्यारहवां काल, काल 10 प्राणों में से एक प्राण है। आज के संगीत में काल ताल के आवर्तन में वह स्थान है जो हाथ को दूर हटाकर व्यक्त होता है। इस क्रिया को ताली के विरुद्ध क्रिया माना जाता है। बारहवां किस्म, किस्म का शब्दशः अर्थ है प्रकार। ठेके के विविध प्रकारों को किस्म कहते हैं। पृष्ठ संख्या 64, किस्म में बिना ताल का स्वरूप बदले ठेके के अक्षरों का अदल बदल किया जाता है और उसे विविध रूपों में एक सूत्र से अनुशासन से प्रस्तुत किया जाता है। 13 खंड। ताल रचना के विविध नियोजित मात्रा समूहों को खंड कहते हैं। ताल केवल मात्राओं की संख्याओं से नहीं बल्कि विविध मात्राओं के खंडबद्ध रचना से सिद्ध होती है। समान मात्राओं के विविध तालों की पहचान संबंधित ताल के खंडों के जरिए हुआ करती है। 14 है खाली भरी। ताल में जिस स्थान पर ताली बजाकर ताल व्यक्त किया जाता है उसे ताली या भरी कहते हैं। खाली यानी काल। खाली भरी की संकल्पना से संपूर्ण तबला वादन किया जाता है। यह खाली भरी की क्रिया विस्तारक्षम रचनाओं के प्रस्तुतिकरण में नियोजनपूर्ण रीति से की जाती है और तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में उसकी प्रकर्ष के साथ प्रतीति होती रहती है। 15 खुला। गूंजमय नाद निर्माण करने वाले वादन को खुला के नाम से संबोधित किया जाता है। सम एवं ताली के इर्द गिर्द बजने वाले बाएं से बाएं के गूंज युक्त अक्षरों का भी इसमें अंतर्भाव होता है। 16 है गंडा बंधन। गंडा बंधन यानी शिष्य स्वीकार विधि। गुरु और शिष्य की सम्मति से चंद ज्ञानी और ज्येष्ठ कलाकारों की उपस्थिति में इस विधि को समारोह पूर्वक संपन्न करने की पद्धति है। शिष्य को स्वीकार करने की इस विधि या क्रिया में गुरु शिष्य के हाथ में एक डोर बांधता है तथा गुरु एवं शिष्य एक दूसरे को चने और गुड़ का कौर खिलाते हैं। इस विधि से गुरु अपने शिष्य को ज्ञान एवं कौशल में पारंगत करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेता है और शिष्य भी अपार मेहनत करके ज्ञान और प्रावीण्य प्राप्त करने की तत्परता दर्शाता है। गंडा बंधन विधि में संगीत क्षेत्र के ज्येष्ठ व्यक्तियों को आमंत्रित करने का उद्देश्य प्रस्तुत शिष्य स्वीकार विधि को सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मति एवं मान्यता प्रदान करना भी होता है। उपस्थिति विद्वजन इस सम्मति के साक्षी होते हैं। फलतः गुरु और शिष्य दोनों पर अपना अपना उत्तरदायित्व निभाने का दबाव निर्माण किया जाता है। गंडा बंधन विधि को नाड़ा बंधन भी कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 65। 17 है गत। गत की संकल्पना को व्याख्या में व्यक्त करना मुश्किल काम है लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वांग सुंदर वादन प्रकार होने के कारण इसके बारे में विस्तृत विवेचन आगे किया गया है। गत की संकल्पना पखावज के परन की संकल्पना से निर्माण हुई है। गत एक सर्वांग सुंदर काव्य होता है। टुकड़ा कोई अच्छा गणित वादक कर सकता है किंतु गत प्रतिभावान शायर वादक ही कर सकता है। प्रकृति या प्राणी मात्र की गतिमानता, उदाहरण के लिए शेर हाथी हिरण इत्यादि की चाल, बगुले का गर्दन हिलाना, नगाड़े के बोल, मेघों की गड़गड़ाहट, बिजली की कौंध इत्यादि। पखावज के सौंदर्यपूर्ण परन कथक के तूड़े या तत्सम रचनाओं की कलात्मक गतिमानता, उन रचनाओं का वजन, उनकी शब्द संगति, उनकी सांगीतिक छंदबद्धता, ध्वनि माधुर्य इत्यादि के प्रभाव के माध्यम से प्रतिभावान कवि मन के रचनाकारों ने खूबसूरत काव्य पंक्तियां निर्माण की। इन्हीं को हम गत के नाम से पहचानते हैं। यह रचना ही इतनी सौंदर्यपूर्ण होती है कि उसके विकास या विस्तार की जरूरत नहीं होती। गत रचना की आत्मा है गतिमानता। इन रचनाओं में शब्द अक्षरों का लयबद्ध संकलन हुआ करता है, उनकी पुनरावृत्ति होती है। कुछ गतों के प्रकारों में खाली भरी के तत्व का भी प्रयोग किया जाता है। 18 है गुलदस्ता। एक ही शैली का वादन करने वाले तबला वादकों को इकरंगा वादन कहकर संबोधित करने की प्रथा थी। इसके विपरीत अलग अलग घरानों के रचनाओं को विविध शैलियों से प्रस्तुत करने वाले चतुरंग कलाकार को गुलदस्ता के नाम से पुकारा जाता है। गुलदस्ता यानी विविध फूलों का गुच्छ है। उस्ताद मुनीर खां को गुलदस्ता की संज्ञा से आदरपूर्वक गौरवान्वित किया जाता था, क्योंकि उनके पास 24 गुरुओं से प्राप्त ज्ञान का खजाना था, जिसे वे सक्षमता के साथ प्रस्तुत करते थे। ऐसे कलाकारों को सौमुखी या हरफन मौला भी कहा जाता है। 19 है घराना। अनुवंश एवं शिष्य वंश के माध्यम से चली आई हुई गायन वादन नृत्य शैली एवं विचार शैली की परंपरा को घराना कहते हैं। 20 है चलन। चलन इस प्रकार की रचना होती है जिसे हम न तो कायदा कह सकते हैं न लग्गी, फिर भी यह रचना विस्तारक्षम होती है। इस रचना की गढ़न कायदे के महत्वपूर्ण शब्दों या शब्द समूह से ही की जाती है। चलन विशिष्ट प्रतीति होती है। पृष्ठ संख्या 66। 21 है चक्रधार या चक्रदार। चक्रधार दीर्घ आकार की वह रचना है जिसका आखिरी अंग तिहाई होता है, और वह रचना सम से शुरू होकर 3 बार बजने से सम पर आती है। 22 चाट थाप। तबले की किनार पर तर्जनी से निकाले गए गूंज युक्त स्वरमय नाद को चाट या किनार पर का ता कहा जाता है। वस्तुतः पूड़ी पर की वर्तूलाकार किनार पर मढ़े हुए चमड़े को चाट कहते हैं, किंतु जिस स्थान को चाट कहते हैं उस स्थान पर निर्माण गूंज युक्त अक्षर को भी चाट कहा जाता है। मध्यमा अनामिका एवं कनिष्ठा को साथ लेकर तर्जनी से स्याही या लव पर जोरदार आघात करके निर्माण होने वाली गूंज युक्त सुरीले नाद को थाप कहते हैं। वादन में कलाकार बीच बीच में थाप बजाकर संगीत क्रिया में चैतन्य निर्माण किया करता है। कभी कभी तबला स्वर में मिलाया गया है या नहीं सो थाप बजाकर जांचने की पद्धति होती है। लव यानी स्याही और किनार के बीच का चमड़ा। 23वां है चिल्ला। रियाज के बिना कौशल प्राप्त नहीं होता, यह तथ्य जानकर अलग अलग तबला वादकों की परंपराओं में कठोर रियाज की विविध पद्धतियां निर्माण हुई हैं। उन्हीं में से चिल्ला भी एक है। एकाध मुश्किल निकास के शब्दाक्षर जिस रचना में होते हैं उस रचना को दैनंदिन घंट दो घंटे सातत्य के साथ 40 दिन तक निरंतर बजाने को चिल्ला करना कहते हैं। 24वां छंद। डॉक्टर सुभद्रा चौधरी जी ने अपने भारतीय संगीत के ताल और रूप विधान ग्रंथ में छंद की संकल्पना की अति सुंदर और शास्त्रीय व्याख्या की है, जो इस प्रकार है। सार्थक या निरर्थक पद अथवा ध्वनि मात्र की रचना के भीतर होने वाला वह आनंददायक तत्व छंद है जिसकी अनुभूति उस रचना के नियत वर्ण अक्षर संख्या अथवा मात्रा संख्या के अनुसार बनने वाले नियत आकार में अनुस्यूत विशिष्ट लय के आधार पर होती है। शास्त्रकार पहले मानते थे कि छंद केवल काव्य या पद्य में होता है, इसलिए उस समय छंद के नीचे दी हुई व्याख्याएं सर्वमान्य थी। पृष्ठ संख्या 67। पहला, छंद नियमित मुख्य ध्वनि रचना है। दूसरा, छंद वह लयात्मक नियमित तथा अर्थपूर्ण वाणी है जिसमें आबद्ध होकर कोई वाक्य या वाक्यांश पद्य का रूप धारण करता है। भाषा शास्त्रियों ने दीर्घ विचार विनिमय के बाद यह मान्य किया है कि यद्यपि काव्य के लिए शब्द आवश्यक हैं, तो भी छंद की निर्मिति के लिए केवल नाद काफी है। यह नाद अर्थपूर्ण हो या निरर्थक, नाद के लयबद्ध नियमित और समयबद्ध आवर्तन से छंद निर्मिति हो ही जाती है। छंदोबद्धता के लक्षण निम्नलिखित हैं: नियमित अक्षर संख्या, दूसरा लघु गुरु अक्षरों के क्रम की नियमितता और यति विराम। छंद की संकल्पना के बारे में अधिक स्पष्टीकरण इस प्रकार है: अ, संगीत रचना और छंद ये दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। एक छंद को बहुत सी स्वर रचनाओं या रागों में बांधा जा सकता है और एक राग में अलग अलग छंद व्यक्त हो सकते हैं। ब, छंद गद्य में नहीं बल्कि पद्य में रचा जाता है। क, छंद और ताल की संकल्पनाएं भी अलग अलग हैं। काव्य में ध्वनि के काल तत्व छंद रूप में व्यक्त होते हैं और स्वर रचना का काल तत्व ताल में व्यक्त होता है। छंद का घटक लघु गुरु अक्षर काल और ताल का घटक मात्रा काल है। अंग, लयबद्धता के बिना छंद नहीं बनता, लेकिन लय और छंद भी अलग अलग संकल्पनाएं हैं। संबद्ध गति से काल के जो खंड बनते हैं उन्हें लय कहते हैं, लेकिन लघु गुरु की इकाइयों के आधार पर लय के बने हुए सुनिश्चित खंड समूह से छंद बनते हैं। ई, छंदोबद्ध रचना सहजता से याद रहती है। 25 है जाति। जाति यानी जात, वर्ग या प्रकार। तालों की भी उनकी मात्रा संख्याओं के अनुसार अलग अलग जातियां होती हैं। नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर के अनुसार ताल की दो मूलभूत जातियां बताई गई हैं। पहला, त्रयस्र और चतरस्र। चतरस्र ताल का यथाक्षर नाम चचतपुट है और त्रयस्र ताल का यथाक्षर नाम चाचपुट है। उनका अंग विभाग नामाक्षरों से ही प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 68। प्राचीन काल में जाति ताल के अंतर्गत थी। जाति का यह ताल के संदर्भ में अभिप्रेत अर्थ आगे बदल गया। आज के कर्नाटक संगीत में ताल में निहित लघु के मात्रा काल या अक्षर काल को संबंधित जाति के नाम से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जिस ताल में लघु की तीन मात्रा काल हो उसे त्रयस्र जाति ताल कहते हैं। जिस ताल में लघु के चार मात्रा काल हो उसे चतरस्र जाति ताल कहते हैं। जिस ताल में लघु के पांच मात्रा काल हो उसे खंड जाति ताल कहते हैं। जिस ताल में लघु के सात मात्रा काल हो उसे मिश्र जाति कहते हैं। जिस ताल में लघु के नौ मात्रा काल हो उसे संकीर्ण जाति ताल कहते हैं। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में तीन मात्रा काल वाले चलन या चलन युक्त रचना को ही त्रयस्र जाति चलन, चार मात्रा काल वाले चलन या चलन युक्त रचना को चतरस्र जाति चलन या रचना कहते हैं। उसी प्रकार खंड, मिश्र और संकीर्ण जाति के बारे में भी कहा जाता है।